अध्याय बचपन की चूड़ियों से इस ट्रे तक। नीले और लाल रंग की रोशनी बार बार कमरे को बदल रही थी, कभी चमक कभी अंधेरा। म्यूजिक की बीट्स इतनी तेज थीं कि दिल की धड़कनों से लड़ने लगी थीं। बाहर की दुनिया अब इस क्लब के पर्दे के पीछे कहीं छूट चुकी थी। यहाँ सिर्फ वो दिखता था जो लोग दिखाना चाहते थे, दिखावे, धन और दरिंदगी का मेल। रैना एक ट्रे संभाले हुए फ्लोर पर घूम रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, वैसी जो चेहरे पर चिपका ली जाती है सिर्फ इसलिए कि लोग समझें कि सब ठीक है। पर अंदर वो हर सांस एक कोशिश थी। अपने पिता की जरूरी एक्सरे की रिपोर्ट्स की चिंता, आने वाले मेडिकल खर्च और समय से पहले बूढ़ा होता उसका दिल। एक्सक्यूज मी, एक पुरुष आवाज आई, भारी मगर चिकनी। रैना ने तुरंत सिर घुमाया। एक गहरे मरून रंग के सूट में सज धज कर बैठा आदमी, जिसकी उम्र 40 से ऊपर होगी, गिलास हिलाते हुए उसकी ओर इशारा कर रहा था। थोड़ी विस्की बर्फ के साथ, लेकिन प्लीज हल्के हाथों से डालना, तुम्हारी उंगलियों की कोमलता देखने लायक है। उसने आखिरी बात धीरे से बोली, जैसे इज्जत और इरादा दोनों को चाकू की धार पर रख दिया हो। रैना ने खुद को स्थिर किया। वो मुस्कुराई नहीं, बस ट्रे से बोतल निकाली, गिलास में बर्फ गिराई और धीरे धीरे माप से विस्की उड़ेल दी। थैंक यू, उसने धीमे से कहा। वेट, आदमी ने कहा, अगर तुम चाहो तो एक गाना बजने तक यहीं रुको, जब तक मैं पी रहा हूँ मेरी नज़र भी कहीं भटके ना। उसने एक 2000 का नोट ट्रे में रख दिया। रैना ठिठकी, लेकिन उसके हाथ कांपे नहीं। उसने नोट देखा, गिलास देखा और फिर उस आदमी की आँखें। वो आँखें कुछ खरीदने नहीं, हथियाने आई थीं। वो वहाँ कुछ पल लुकी रही, एक ठंडी सी मौजूदगी की तरह। जब गाना खत्म हुआ वो बिना बोले आगे बढ़ गई। यहाँ बैठे लोग कुछ ज्यादा ही मुँहफट और पैसे के जोर पर पागल लगते थे। ओ ब्यूटी, इधर आओ जरा, एक और आदमी, इस बार युवा और उत्साही, दूर से ही हाथ लहराते हुए बोला। रैना उसके पास पहुंची। वॉटका विथ लाइम, उसने पूछा। वॉटका यस, बट ओनली इफ तुम अपने हाथों से नींबू निचोड़ोगी, किसी और से करवाया तो पीने का स्वाद ही चला जाएगा, उसने अपनी बात में जैसे व्यंग्य भी डाला था और चुनौती भी। रैना ने ट्रे से नींबू की स्लाइस उठाई और झुककर उसके गिलास में निचोड़ने लगी। वाओ, तुम्हारे हाथों में तो जैसे इलायची की महक है, उस लड़के ने हंसते हुए कहा। पास बैठे उसके दोस्तों ने सीटियां मारी। रैना ने नजरें नहीं मिलाईं, बस काम निपटाया और आगे बढ़ गई। कुछ ही पलों में तीसरी सोफे पर, यहाँ बैठे मर्दों की उम्र 55-60 के बीच रहे होंगे। उनके कपड़ों की सिलवटें जितनी परिपक्व थीं, उनकी आंखें उतनी ही गहरी थीं। आओ बेकी, उनमें से एक ने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों में ही असली सादगी दिखती है। रैना जानती थी कि ये सादगी वाला शब्द एक मुखौटा होता है, जिसके पीछे उनका असली इरादा छिपा होता है। ब्रांडी चाहिए, उसने पूछा। ब्रांडी नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए, दो घूंट तुम पी लो, दो हम। रैना के चेहरे की मुस्कान अब थोड़ा हिल गई थी। सर, मैं ड्रिंक नहीं ले सकती, ये क्लब की पॉलिसी है। नीचे नियम होते हैं, ऊपर ज़रूरतें होती हैं, एक ने कहा और एक 50-50 के चार नोट ट्रे में डाल दिए। अब की बार रैना का हाथ थोड़ा कांप गया, पर उसने मना नहीं किया, बस गिलास में ब्रांडी डाली और चुपचाप वहां से हट गई। कुछ दूरी पर अखिल अब भी बैठा था, हर उस टेबल को देखता जहां रैना जाती थी। उसकी आंखों में कोई स्पष्ट भावना नहीं थी, न प्यार, न दया, न गुस्सा, बस एक भारी चुप्पी जो हर क्षण और गाढ़ी होती जा रही थी। अब वो क्या साबित कर रही है, उसने सोचा, क्या ये मजबूरी है या उसकी आदत बन गई है लोगों के करीब जाना। लेकिन उस सोच के नीचे एक और आवाज थी जो अखिल खुद से छुपा रहा था। कहीं मुझे उससे हमदर्दी तो नहीं हो रही। वो सिर झटकता, गिलास में दोबारा शराब भरता। उधर रैना बाथरूम की तरफ जाने के लिए रुख कर रही थी, लेकिन रास्ते में एक और आदमी ने उसे टोक दिया। एक्सक्यूज मी, एक स्पेशल ड्रिंक मंगानी है, पर तुम्हारी जैसी वेट्रेस से ही, तुम्हारी आंखें बहुत ठंडी लगती हैं, शायद पीते समय दिल थोड़ा नरम हो जाए। रैना ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और ट्रे ठीक की। हर टेबल, हर नज़र, हर टिप अब एक परब बन चुकी थी उसकी आत्मा पर। पैसे आ रहे थे, लेकिन इंसानियत धीरे धीरे छूट रही थी। वो मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर अब उस मुस्कान में नरमी नहीं थी, सिर्फ सर्वाइवल था। और वो जानती थी ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी।